जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त श्री चैतन्य चरितामृत की मैं कल कितना तक किया था 47 ना हाँ 56 तक हाँ 56 कल मैं 56 श्लोक तक 56 श्लोक तक पाठ किया था मध्य लीला 16 अध्याय मैं 54 से शुरू करता हूँ। पूर्ववत रथ यात्रा कईल दर्शन हेरा पंचमी यात्रा देखे लइया भक्तगण। पिछले वर्ष की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों सहित रथ यात्रा उत्सव तथा हेरा पंचमी उत्सव भी देखा। आचार्य गोसाई प्रभुर कईल निमंत्रण तार मध्ये कईल जयछे झड़ परिशन। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान आ गया। विस्तारी बोर्णिया छेन दास वृंदावन श्रीवास प्रभुरे तबे कोईलो निमंत्रण। इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रभुर प्रिय व्यंजन सब रांधेन मालिनी भक्ते दासी अभिमान स्नेहेते जननी। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई। वे भक्ति वश अपने को महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह में वे माता तुल्य थी। श्रीवास ठाकुर का पत्नी थी मालिनी देवी। तो श्रीवास ठाकुर ने उनको चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया घर में प्रसाद लेने के लिए। और तो यहाँ मालिनी देवी का वर्णन हो रहा है। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने प्रिय व्यंजन थे, तरकारियाँ जो महाप्रभु का प्रिय था, वो सब तरकारियाँ पकाई और उनकी वर्णन करते हुए बोला कि भक्ति में उनका मन में भगवान की दासी, महाप्रभु की दासी की भावना थी। दासी जैसी मानती थी अपने आप को, बल्कि स्नेह में वो माता तुल्य थी। महाप्रभु का अपने पुत्र की तरह उन्होंने देखती थी। आचार्य रत्न आदि जत मुख्य भक्तगण मध्य मध्य प्रभुरे करें निमंत्रण। चंद्रशेखर आचार्य रत्न आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से महाप्रभु को निमंत्रण करते रहे। चातुर्मास्य अन्ते पुनः नित्यानन्द लइया किबा युक्ति करे नित्य निभृते बसिया। चातुर्मास्य बीत जाने पर महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से परामर्श करते थे, किंतु कोई ये नहीं जान सका कि वे क्या बातें करते थे। आचार्य गोसाई प्रभु के कड़े ठाड़े ठाड़े आचार्य तर्जा पड़े के हो बुझीते ना पारे। तब शिला अद्वैत आचार्य ने इशारों में महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद पड़े जिन्हें कोई नहीं जान सकता था। तार मुख देखी हासे शचिर नंदन अंगीकार जानी आचार्य करे नर्तन। अद्वैत आचार्य का मुंह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। ये जानकर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। किबा प्रार्थना किबा आज्ञा केह ना बुझिल आलिंगन करी प्रभु तारे विदाय दिल। ये कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्यों का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। नित्यानंद कहे प्रभु सुनहो श्रीपाद एई आमी मागी तुमी करहो प्रसाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद मेरी सुनो, मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करो। प्रतिवर्षे नीलाचले तुमे ना शिवा गौरे रही मोर इच्छा सफल करिबा। प्रतिवर्ष जगन्नाथ पुरी ना आकर अपितु बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। ताहा सिद्धि करे कहन अन्य ना देखिए आमार दुष्कर कर्म तोमा हईते हए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम ये कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौर देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे मिशन को पूरा कर सके। अचिंत शक्ति करो तुमी ताहार घटन जे करा हो सेई करी नाही को नियम। आप अपने अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूँ। तारे विदाय दिलो प्रभु कोरी आलिंगन एई मात्र विदाय दिलो सब भक्तगण। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों को विदा किया। कुलीन ग्रामी पूर्ववत कोइलो निवेदन प्रभु आज्ञा करो आमार कर्तव्य साधन। पिछले वर्ष की भांति कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु कृपा करके बताए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य का कुछ इशारा में और कुछ ऐसे ऐसे कुछ गुप्त भाव में कुछ बातचीत हुआ था। ऐसे हम जब बातें करते हैं तो सीधे बोलते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसे भी बातें किया जाता है ताकि दूसरे ना समझ सके। तो अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के साथ ऐसे कुछ बात किया था। और वो ये बात सुनकर कोई समझ नहीं पाया कि अद्वैत आचार्य ने क्या बोला और महाप्रभु ने उनको क्या स्वीकार किया। ये अद्वैत आचार्य की बातें सुनकर महाप्रभु मुस्काए, महाप्रभु हंसने लगे। तो अद्वैत आचार्य को पता चला कि महाप्रभु उनका जो कहना था उसको स्वीकार कर लिया, तो बहुत खुशी होकर उन्होंने नाचने लगे। और इसके पश्चात महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तो हमेशा हर साल तुम जगन्नाथपुरी में मत आया करो। क्यों? उन्होंने बताया कि ये बंगाल में प्रचार करने का जो कार्य है वो तो हमको करने को था, बल्कि मैं तो निकल गया हूँ, मैं संन्यास ले लिया, तो ये कार्य तुमको करना, प्रचार करना। तो प्रचार अगर करोगे और हर साल अगर यहाँ आओगे तो 3-4 महीना हर साल ऐसे ही चला जाएगा। तुम यहाँ ठहरोगे 3 महीना और आने जाने में भी शायद 1 महीना लग जाएगा, तो महीना 12 महीना में अगर 4 महीना तुम यहाँ रहोगे तो प्रचार कैसे होगा? तो इसलिए तुमको यहाँ मत आना, तुम बंगाल में ही रहकर प्रचार करो। और उनके ये कहने के, ये निर्देश देने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन किया और इसके बाद उन्होंने और सारे भक्तों को विदा किया। सब लोग जगन्नाथपुरी आए थे, क्यों आए थे? रथ यात्रा के लिए। तो रथ यात्रा के पश्चात उन्होंने वहाँ ठहर गए थे। बारिश के समय तो सफ़र करना उस समय मुश्किल होता, क्योंकि इतना पानी होता और कीचड़ होता बारिश के समय। इस समय सफ़र करना, भ्रमण करना मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने भ्रमण, साधु लोग उस समय भ्रमण नहीं करते थे। एक ही जगह रहकर भगवान के चिंतन में, भगवान के महिमा कीर्तन में उन्होंने बिताते थे, जिसे चातुर्मास्य कहा जाता है। तो चातुर्मास्य का समाप्ति के बाद जब सब लौटने थे, लौटते रहे, लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, तब महाप्रभु ने उन सबको मिला था। अद्वैताचार्य को मिला था, नित्यानंद प्रभु को मिला, और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कुलीन ग्राम के जो आदमी थे, भक्त लोग थे, उनके साथ मिले। तब एक कुलीन ग्राम वासी ने, कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु कृपा कृपा करके बताए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। भक्त लोग के मन में ये प्रश्न आता है बहुत बार, मैं क्या करूं, कैसे मैं भक्ति करूं, जो मैं कर रहा हूं ये क्या सही हो रहा है? तो तब चैतन्य महा, ये प्रश्न होता ना, सब लोग भक्त कर रहे हो, सब एकदम परफेक्ट बन गए हो या बनने का कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे, जब कोशिश कर रहे हो तब ऐसा लगता है कभी कभी कि कैसे मैं और भी अच्छा तरह सेवा कर सकूं, जो मैं कर रहा हूं ये क्या सही हो रहा है? लगता तो है नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि बल्कि लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं। तो ऐसी मनोभाव होता है, ऐसी सवाल मन में आता है। तो ये भक्त तो पूछा महाप्रभु को, क्या मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है। तो इसका जवाब भी ध्यान से सुनना, ठीक है? सब ध्यान से सुन रहे हो? हाँ ये सुनने के लिए तैयार हो? हाँ ओके, तो सुनो। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। अर्थात महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रश्न क्या था? हाँ? मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे मैं भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ूं? तो आप, आपका मन में भी ये प्रश्न है? हाँ? जिसका मन में प्रश्न है, जिसका मन में प्रश्न नहीं है हाथ उठाइए। हाँ? अच्छा, मतलब सबको मन में ही ये प्रश्न है, कैसे मैं भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ सकता, क्या कर्तव्य है मेरा, क्या करना चाहिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? तुम्हें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के दासों की सेवा में अपने को लगाओ और सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन किया करो। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकोगे। हाँ, क्या करना चाहिए? वैष्णव का सेवा, वैष्णव, वैष्णव कौन है? हाँ, वैष्णव, हाँ वैष्णव कौन है? वैष्णव का मतलब है जो भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है, भगवान का दास है। विष्णु का भक्त को, विष्णु कौन है? विष्णु है भगवान, भगवान के जो दास हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। विष्णु से ये शब्द आया है, विष्णु स्वयं भगवान, भगवान का दास है, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त है वैष्णव। तो वैष्णवों को सेवा करना, भगवान के भक्तों को सेवा करना, उनको सहयोग देना, उनका कार्य में मदद देना, तो ये है वैष्णव सेवा। केवल दो कार्य हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है ना। पूछा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, महाप्रभु सिर्फ दो काम दिया, वैष्णवों को सेवा करो और नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का मतलब भगवान का नाम का कीर्तन करते रहो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और दूसरे को भी भगवान के नाम कीर्तन करने में प्रेरणा देते रहो, ये इसी का मतलब है भक्ति। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन। अगर तुम ये दो काम करोगे, यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकोगी। भगवान के चरण कमलों में शरण लेना जीवन का अंतिम उद्देश्य है, तो ये काम क्या कठिन है? भगवान के चरण कमलों का शरण लेना कठिन है? किसी को शरण लेना कठिन है? नहीं, उनके समान बनना या उनसे बड़ा होना कठिन होता है। हम अगर आपके पास आकर बोला कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आपका मन में तब क्या ऐसा भावना आएगा? कैसा भावना आएगा? ऐसा भावना आएगा कि ओ अच्छा, आप इतना, चलिए हम मेरे लिए आपको कुछ करना नहीं, आप बताइए आपको लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो बोलेंगे नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये भाव, हाँ ये भाव ही होना चाहिए। तो ये भाव का प्रकाश कैसे होता है, ऐसे संपर्क कैसे बनता है? जब हम विनम्र भाव से उनके शरण लेते हैं, मतलब उनसे छोटा बन जाते हैं। बल्कि जब हम उनसे बड़ा बनना चाहते हैं तब क्या होता है, तब कठिन है। वो हम जाके बोलेंगे मैं आपसे बड़ा बनना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे, क्या आप हमसे बड़ा बनेंगे? मैं आपसे कितना बड़ा हूं? तो बाद में हम बोलेंगे ठीक है चलो देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब वापस में लड़ाई होगा। तो लड़ाई में अंत, लड़ाई के समय बहुत चोट लगता है, कठिनाई होता है, और उसके पश्चात एक बड़ा बनता है और दूसरा खत्म हो जाता है। तो ये जो है इसमें तकलीफ काफी होता है ना, बड़ा बनने में काफी कठिनाई है, बल्कि छोटा बनने में कोई कठिनाई या असुविधा है होता है नहीं। तो हमें क्या बनना चाहिए, बल्कि आप सवाल है छोटा बनना चाहिए, बल्कि किसके पास छोटा बनना चाहिए, जो सही रूप से जो असल से ही बड़ा है उनके पास जाके छोटा बनना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है भगवान। सो भगवान से छोटा बनने में कोई हर्जा है? भगवान से छोटा बनने में कोई असुविधा या मुश्किल हो सकता है? नहीं। तो पहले हम वहां से ही शुरू करते हैं, है ना, भगवान से छोटा बनना। तो छोटा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उनके छोटा का मतलब छोटा बड़े के अधीन रहता है, उनके शरण में रहते हैं, अर्थात उनका मनोभाव ये होता है कि मैं आपका शरण ले लिया, आप मेरा देखभाल कीजिए, आप मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए, और मैं भी आपको पूछता रहूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब ये प्रश्न कौन किया था? कुलीन ग्राम के निवासी, कुलीन ग्राम के निवासी ने प्रश्न किया। तब महाप्रभु का उत्तर क्या था? श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्तर क्या था? वैष्णवों को सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम का कीर्तन करो। तो ये काम तो मैं जैसे पूछा था, ये क्या कोई कठिन काम है? तो ये काम करने से क्या होगा? तुरंत ही श्री कृष्ण का चरण कमलों का सहारा मिल जाएगा। दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। ये दो काम अगर तुम करोगे तो जल्दी से जल्दी ही तुम्हें कृष्ण का चरण कमलों का सहारा मिल जाएगा। तब कुलीन ग्राम के निवासी और एक प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु का। तो उन्होंने क्या बोला? तेहो कहे के वैष्णव कीतार लक्षण, तबे हासी को कहे प्रभु जानी तार मौन। उस कुलीन ग्राम वासी ने कहा कृष्ण कृपा करके बतलाए कि वास्तव में वैष्णव कौन है? आप तो बोला वैष्णव को सेवा करना, बल्कि वैष्णव कौन है? मैं कैसे पहचानूं वैष्णव को? उनका उसके लक्षण क्या है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो व्यक्ति सदैव भगवान का नाम कीर्तन करता रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव मानना चाहिए। और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। मतलब जो व्यक्ति सदा हर समय भगवान का नाम कीर्तन करता रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव मानना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, उत्तम वैष्णव कौन है? जो निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करता है। जो नहीं करता है वो मध्यम, जो नहीं कभी कभी करता है वो है मध्यम। बल्कि उत्तम जो हर समय भगवान का नाम कीर्तन करते हैं उनका ही सेवा करना चाहिए, उत्तम वैष्णव का सेवा करना चाहिए। বর্ণান্তরে পুনতারা ঐছে প্রশ্ন কইল, বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল। আগলে বর্ষ ভি কুলিন গ্রামবাসীয় নে মহাপ্রভু সে ফির ওই প্রশ্ন পুছা। মহাপ্রভু নে পুনঃ বিভিন্ন প্রকার কে বৈষ্ণব কো বিভিন্ন প্রকার কে বৈষ্ণব কে বিষয় মে শিক্ষা দি। যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে কহা, উত্তম কোটি কা বৈষ্ণব ও হ্যায় জিসকি উপস্থিতি মাত্র সে অন্য লোক কৃষ্ণ নাম কা কীর্তন করনে লাগতে হ্যায়। উসসে ভি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কোন হ্যায় জো হর সময় ভগবান কা নাম লেতে হ্যায়, ও উত্তম বৈষ্ণব হ্যায়। উনসে ভি বড়কর কোন হ্যায়, উনসে ভি বড়কর কোন হ্যায়, জিনকো দেখনে সে হি কৃষ্ণ নাম মুহ মে আ জাতা হ্যায়। আচ্ছা, তো পহলি বার পহলে সাল প্রশ্ন কিয়া থা, কোন কিয়া প্রশ্ন থা, এই প্রশ্ন থা বৈষ্ণব কোন হ্যায়। তো মহাপ্রভু উত্তর দিয়া থা, গঙ্গা নারায়ণ শুরু শুরু মে বতায়া থা, বতাও গঙ্গা নারায়ণ। জিসকা মুহ মে একবার কৃষ্ণ নাম হতা হ্যায় উনকো ভি বৈষ্ণব মাননা চাহিয়ে আর উনকে উনকো শ্রদ্ধা করনা চাহিয়ে। আচ্ছা, ইসকে বাদ ইস সাল উনহোনে ক্যা পুছা, জব পুছা বৈষ্ণব কোন হ্যায়, তব মহাপ্রভু নে বতায়া জো কৃষ্ণ নাম করতে হ্যায় ও হ্যায় বৈষ্ণব। জো নিরন্তর, নিরন্তর কা মতলব হমেশা, সদৈব, জো সদা সর্বদা ভগবান কা নাম কীর্তন করতে হ্যায় ও হ্যায় বৈষ্ণব, মতলব ও হ্যায় উনসে বড়কর। জো এক দো বার ভগবান কা নাম লেতে হ্যায় উনসে বড়কর হ্যায় জো হর সময় ভগবান কা নাম লেতে রহতে হ্যায়। অর উসকে পশ্চাৎ আগলে সাল উনহোনে জব আয়া তো ভি তব ভি উনহোনে ইয়ে প্রশ্ন কিয়ে থে আর তব মহাপ্রভু নে উত্তর কিয়া দিয়া, সবসে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কোন হ্যায়, বৈষ্ণব প্রধান, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হ্যায় ও জিনকো দেখনে সে হি মুহ মে কৃষ্ণ নাম আ জাতা হ্যায়। ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ, বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম। ইস্তরহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে বিভিন্ন প্রকার কে বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর তথা বৈষ্ণবতম কি শিক্ষা দি। উনহোনে কুলিন গ্রাম কি নিবাসীয় কো এক কে বাদ এক করকে বৈষ্ণব কে সারে লক্ষণ সমঝা দিয়া। এই মতো সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা, বিদ্যানিধি শেষবৎসর নীলাচরি রহিলা। অন্তত গত্যা সারে বৈষ্ণব জন বঙ্গাল লোট গে, কিন্তু উস বর্ষ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জগন্নাথ পুরী মে হি রহে। স্বরূপ সহিত তার হয় সত্য প্রীতি, দুই জনায় কৃষ্ণ কথায় এই স্থিতি। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তথা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা থি, আর যাহা তক কৃষ্ণ বিষয় কথাও পর বাদ বিবাদ করনে কি বাত থি, ওয়ে দোনো হি সমান স্তর কে থে। গদাধর পণ্ডিতে তেহ পুনমন্ত্র দিল, ओरण षष्ठीर दिन यात्रा जे देखिल। पुंडरीक विद्याधिधि ने गदाधर पंडित को दोबारा दीक्षित किया और ओरण षष्ठी के दिन उसने उत्सव देखा। गदाधर पंडित एक समय पुंडरीक विद्याधिधि के चरण में कुछ अपराध कर चुके थे। उस समय महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, बल्कि बाद में उन्होंने बताया कि पुंडरीक विद्याधिधि के पास कुछ अपराध हो गए। तो ये अपराध खंडन के लिए क्या निर्देश चैतन्य महाप्रभु दिया? बोला कि तुम उनके पास जाके दीक्षा ले। तो वैसे गदाधर पंडित, यद्यपि उनका दीक्षा पूर्व पहले ही हो चुका था, फिर से उन्होंने गदाधर पंडित से मंत्र लेकर उनका शिष्य बन गए। पुंडरीक विद्यानिधि का शिष्य बन, गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि का शिष्य बन। और वैसे भी हम देखेंगे, जब हम आगे और बढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये सारे विचार जो हैं इसका पीछे एक, और ये जो लीला है ये लीला का पीछे और कोई बात भी था। जैसे गदाधर पंडित कौन है कृष्ण लीला में? गदाधर पंडित हैं राधा रानी। और पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? महाराज विश्वभानु, किंग विश्वभानु राज। तो राधा रानी का पुंडरीक विद्यानिधि क्या कौन होते थे? राधा रानी का पिता। तो गदाधर पंडित है राधा रानी और पुंडरीक विद्यानिधि है उनका पिता। तो उनके पास कैसे रहना चाहिए था? उनको विनम्र भाव से, बेटी जैसे, पुत्री जैसे अपने पिता के पास रहते हैं, वैसे ही राधा रानी के भाव लेकर गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को शरण लिया। जगन्नाथ पौरेन तथा, अच्छा अब वर्णन हो रहा है पुंडरीक विद्यानिधि का जो महान स्थिति था उसका। जगन्नाथ पौरेन तथा मारुआ बसन देखिया सघृण हईल विद्यानिधिर मन। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मारयुक्त वस्त्र ओढ़ाया जाता है, तो वो कुछ कुछ घृणा से भर गया। इस तरह उसका मन दूषित हो गया। गदाधर पंडित जगन्नाथ मंदिर में गए थे। गदाधर पंडित रहते थे बंगाल में, जो आज पूर्व बंगाल है। उस समुद्र के किनारे एक शहर है जिसका नाम है चट्टग्राम। पुंडरीक विद्यानिधि का स्थिति वहां पर था, चट्टग्राम शहर में। उनका जो मकान था वो अब भी है, मकान तो गिर गया है, बल्कि वो जमीन जो है वो अब इस्कॉन को जिम्मेदारी में है। काफी बड़ा वो जमींदार थे, बहुत मशहूर व्यक्ति थे। तो उन्होंने जब जगन्नाथपुरी आया और देखा कि जगन्नाथ को मार युक्त वस्त्र दिया गया। मार का मतलब क्या होता है? मार एररूट को कपड़ा सख्त करने के लिए, कैसे माड़ी बोलता है ना, माड़। ओके धन्यवाद। माड़ युक्त वस्त्र। तो ये माड़ जो है ये शुद्ध नहीं है माना जाता है। कपड़ा में ऐसे लगाया जाता है नया कपड़ा में, बल्कि उसको धोकर पहनते हैं। तो ये माड़ युक्त वस्त्र उनको पहनाया गया था जगन्नाथ को। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने इसका कुछ आलोचना किया कि ये कैसे, पुजारी लोग कैसे हैं, ये जो कपड़ा, ये जो शुद्ध नहीं है, ये जगन्नाथ को पहनाया है। সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসি, জগন্নাথ বলাই আসিয়া দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া। উস রাত কো জগন্নাথ তথা বলরাম দো ভাই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে ঘর আয়ে আর হাস হাস কর উসে চপট লাগানে লাগে। কিউ গাল ফুলিল আচার্য অন্তরে উল্লাস, বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। যদ্যপি চপট লাগানে সে গাল সুজ উঠে থে, কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভিতর সে পরম প্রসন্ন থে। ইস ঘটনা কা বিস্তৃত বর্ণন ঠাকুর বৃন্দাবন দাস নে কিয়া হে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত মে ইসকা বিস্তৃত বর্ণন কিয়ে। এই মতো প্রত্যুব্ধ আয়ুষ, আচ্ছা কেউ চপট লাগায় জগন্নাথ আর বলদেব নে? হ্যাঁ, জগন্নাথ কা চুকি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে নে জগন্নাথ কে আর বলরাম কে পূজারিও কো নিন্দন কিয়া, উনকি বারে মে কুছ উল্টা সিধা বোলা, তো ইসলিয়ে জগন্নাথ কো উনকো সজা দেনে আয়া, গুসা হুয়া ও তুম মেরা ভক্ত কো মেরে সেবক কো আলোচনা কর রহে হো, ঠিক হ্যাঁ। আর যদ্যপি এসা লগা কি ও সপনা দেখ রহা থা, নীদ মে সপনা দেখ রহে থে, বল্কি ইয়ে সপনা নহীঁ থা, কিউকি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নে জব জাগ উঠা ও চপট খাকর তব দেখা কি উনকা গাল মে সুজ হো গয়ে। সহি চপট লাগানে সে জ্যাসা গাল মে সুজ হো জাতা হ্যায়, তো জগন্নাথ আর বলরাম কা চপট খাকর তব বল্কি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কা মন মে বহুত আনন্দ হুয়া, ও বহুত প্রসন্ন হো গয়া, কিউকি ভগবান কা ভগবান সে সজা মিলনে সে ভি ভক্ত কা মন মে আনন্দ। এই মতো প্রত্যুব্ধ আয় সে গৌড়ের ভক্তগণ, প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দর্শন। প্রতিবর্ষ বঙ্গাল কে ভক্তগণ আতে আর রথযাত্রা কা দর্শন করনে কে লিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে সাথ ঠহরতে থে। তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ, বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব নিঃশেষ। উন বর্ষো মে যো কুছ উল্লেখনীয় ঘটনায় ঘটি, উনকা বর্ণন বাদ মে কিয়া যায়গা। এই মতো মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল, দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল। ইস্তরহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে চার বর্ষ বিতায়ে, প্রথম দু বর্ষ উনহোনে দক্ষিণ ভারত কে ভ্রমণ মে লগা দিয়া। আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে, রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে। অন্য দু বর্ষ তক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন জানা চাহতে রহে, কিন্তু ওয়ে রামানন্দ রায় কি চালকে কারণ জগন্নাথপুরি ছোড় নহি পায়া। যদ্যপি চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরি ছোড়কর বৃন্দাবন জানে কা জানা চাহতে থে, বল্কি রামানন্দ রায়কে চালো সে, মতলব রামানন্দ রায় কুছ এসা চাল চালা কি মহাপ্রভু জা নহি সকা। জেসে মে বতায়া থা, বোলা ও রথযাত্রা আনে বালা হ্যায়, আপ রথযাত্রা তক ঠহরিয়ে। তো রথযাত্রা কে বাদ জব মহাপ্রভু জানে কে লিয়ে সোচা, ও আপ তো বারিশ হো রহা হ্যায়, আপ জানা মুশকিল হোগা, তো এসে বাহানা দেতে রহে তাকি মহাপ্রভু নহি যা সকা। পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইল, রথ দেখি না রহিলে গৌড়ের চলিলা। পাঁচওয়ে বর্ষ বঙ্গাল কে ভক্তগণ রথযাত্রা দেখনে আয়ে, কিন্তু দেখনে কে বাদ ওয়ে রুকে নহি, অপিতু বঙ্গাল উঠ গয়ে। তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দ স্থানে আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে। তব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথা রামানন্দ রায়কে সমক্ষ এক প্রস্তাব রক্ষা। উনহোনে উন দোনো কো আলিঙ্গন করকে দোনো কা আলিঙ্গন করতে হুয়ে কহা, বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন, তোমার হঠে দুই বৎসর না কইলু গমন। চৈতন্য মহাপ্রভু নে কহা, বৃন্দাবন জানে কি মেরি ইচ্ছা বতলাতি হো উঠি হ্যাঁ, তুমারি চালু সে মে বিগত দো বর্ষ সে যা নহি পায়া। অবশ্য চলিব দুহে করহ সম্পতি সম্মতি, তোমা দুহা বিনা মোরে নাই অন্য গতি। আব মে অবশ্য যাউঙ্গা, আব তো তুম লোক অনুমতি দোগে, তুম দোনো কে অতিরিক্ত মেরে পাশ কই অন্য আশ্রয় নহি হ্যাঁ। গৌড় দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়, জগনী জননী জাহ্নবীদে এই দুই দয়াময়। বঙ্গাল মে মেরে দো আশ্রয় হ্যাঁ, মেরি মাতা তথা গঙ্গা নদী, ইয়ে দোনো অত্যন্ত দয়াময় হ্যাঁ। গৌড় দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া, তুমি দুহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া। মে বঙ্গাল হোতা হুয়া বৃন্দাবন যাউঙ্গা, আর আপনি মাতা তথা গঙ্গা নদী দোনো কো দেখুঙ্গা, ক্যা আপ তুম দোনো মুঝে অনুমতি দোগে। কোন পুছ রহে হ্যাঁ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিসকো পুছ রহে হ্যাঁ? ওকে, ভেরি গুড। শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচার হয়, প্রভুষণে অতিহট কভু ভালো নয়। জব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথা রামানন্দ রায় নে ইয়ে শব্দ শুনে তো ওয়ে বিচার করনে লগে কি ইয়ে অচ্ছি বাত নহি হ্যাঁ, কি মহাপ্রভু কে সাথ ইতনি চালো চালি যা রহি হ্যাঁ। দুই কহে পূর্বে বর্ষা চলিতে নারিবা, বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য মার চলিবা। উন দোনো নে কহা, বর্ষা ঋতু হোনে সে আপকে লিয়ে যাত্রা করনা কঠিন হো যায়গা, বৃন্দাবন প্রস্তাব করনে কে লিয়ে বিজয়া দশমী তক প্রতীক্ষা করনা ঠিক রহেগা। আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কইল সমাধান, বিজয়া দশমী দিনে করিল প্রয়াণ। ইস্তরহা অনুমতি প্রাপ্ত করকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যধিক প্রসন্ন হুয়ে, উনহোনে বর্ষা ঋতু বীত জানে তক কা প্রতীক্ষা কি, আর জব বিজয়া দশমী আই তো ওয়ে বৃন্দাবন কে লিয়ে চল পড়ে। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही पाठ रखते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? श्लोक 85। यस, कृष्ण अर्जुन। ভক্ত ভগবান কো ছোড়না নেই চাতে, হর সময় ভগবান কে সাথ হি রহনা চাতে, ইয়ে হ্যায় প্যার কা লক্ষণ। জব প্যার হোতা হ্যায় প্যার কে কারণ হম ক্যা চাতে, প্রেমিক আর প্রেমিকা কে বীচ জব প্যার হোতা হ্যায় তো দোনো এক সাথ রহনা চাতে হ্যায়, বল্কি ये सब हर समय संभव नहीं होता है। तो यद्यपि एक दूसरे से और कहीं जाने का ये होता है, तो स्वतः ही प्रेम के कारण उनको रोकने का इच्छा होता है। तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन? कृष्ण, राधा रानी के भाव लेकर कृष्ण। और सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय है उनके भक्त। उनके भक्त होने के नाते उन्होंने भी चाहते थे कि महाप्रभु हमारे साथ ही रहे, जितना तक सके महाप्रभु हमारे साथ रहे। तो इसलिए उन्होंने वैसे बाधा डाल रहे थे, इसमें कोई हर्जा नहीं। भक्त जब भगवान को ये करते हैं, और ये है प्रेम भक्ति का लक्षण, वैधि भक्ति में ये ऐसा नहीं होगा। जहाँ ऐश्वर्य प्रधान है उस भक्ति में ऐसी भावना का प्रकाश नहीं होगा। वहां सब कृष्ण को राजकुमार के रूप में या परमेश्वर भगवान के रूप में सेवा करते हैं द्वारका में। बल्कि वृंदावन में भगवान के भक्त लोग भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। यद्यपि भगवान बोलते हैं हमको जाने दो, बोलेंगे नहीं जाने दो। ये है प्यार का लक्षण। इसका वर्णन तो नहीं हुआ, बल्कि लगता है कि अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को बोला नित्यानंद को बंगाल में रहना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है ना? तो उसको थोड़ा ये करो, तो मेरा बात तो नहीं सुनता है मेरा साथ वो केवल झगड़ा लड़ाई करता है। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच एक बहुत बहुत सुंदर प्यार के संपर्क था, याद है? प्रेम कुंदल, प्रेम की कुंदल। कुंदल शब्द हिंदी में आता है। अच्छा, तो कुंदल शब्द का अर्थ क्या होगा हिंदी में? झगड़ा, प्यार का झगड़ा। और झगड़ा का और कोई शुद्ध शब्द है क्या? प्यार का कलह, प्यार का संघर्ष तो याद है जब महाप्रभु संन्यास लेके तीन दिन वैसे वृंदावन की ओर चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रास्ता भुला के शांतिपुर ले गया। वृंदावन जाने को सोचा बल्कि, और शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में लाया गया। तो अद्वैताचार्य ने, अद्वैत आचार्य का पत्नी सीता देवी ने करीब 100 से भी अधिक प्रिपरेशन बनाई थी और महाप्रभु को खिलाने लगे। नित्यानंद प्रभु को भी, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों को एक साथ बैठा के खिलाने लगे। महाप्रभु ने क्या बोला कि मेरे लिए तो, मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए इतना खाना ऐसा राजसिक खाना ठीक नहीं है। बल्कि अद्वैताचार्य ने उनको ये करने लगे, जोर करने लगे कि नहीं, भगवान का प्रसाद है ये, तो आपको देखना चाहिए कि भगवान कैसे इसको आस्वादन किए हैं, ये आप देखना। तो ऐसे जबरदस्त उन्होंने महाप्रभु को खिलाने लगे। बल्कि नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला कि मैं 3 दिन के भूखा हूं और देखो कितना इससे तो मेरा मेरा भूखा भूख मिटेगा नहीं। और अद्वैताचार्य ने क्या बोला, तुम तो अवधूत हो, इधर उधर घूमते हो, कभी तुमको खाना मिलता है कभी खाना नहीं मिलता है, तो जो कुछ मिला है उसको ही परम प्रसन्न होकर खा लो। तो ऐसे दोनों के बीच में ये होता था। और नित्यानंद प्रभु तब क्या बोला, देखो ये कैसे ब्राह्मण है, हमको घर में बुलाया और घर में बुला के हमको ऐसे हमको डांट रहा है, खिलाया खिलाने ही रहा है परंतु। तो वैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जो प्रभु के बीच एक बहुत सुंदर प्यार के संपर्क था, तो इसके नाते चैतन्य महाप्रभु को अद्वैताचार्य ने बोला, नित्यानंद प्रभु साथ था सामने, नित्यानंद प्रभु सामने रहने के कारण उसको बोलना नहीं सका, तुम उसको बोलो बंगाल में रहने के लिए और वहाँ रहकर प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने बताया, कैसे बताया, सांकेतिक भाषा में बताया। तो महाप्रभु समझ गया, तो उसके पश्चात महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम यह मत आना, हर साल पूरी मत आना रथ यात्रा के अवसर पर, अच्छा रहेगा कि तुम बंगाल में ही रहो और वहां प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में बहुत प्रचार किया, उन्हीं के कारण बंगाल में इतना प्रचार उस समय हुआ था। सारा बंगाल उस समय कृष्ण भक्ति का, कृष्ण कृष्ण भक्ति के बाण से सब डूब गया था। अगर हम लोग वृंदावन में होते तो ऐसे लीला कर सकता था। थैंक यू। न वो तो अद्वैताचार्य और महाप्रभु के बीच।
उससे पहले नित्यानंद और चेतना के बीच में काफी वर्णन है।
अच्छा, यहाँ पर है। अच्छा हाँ, अच्छा ये श्लोक, ओ मैं शायद दो तीन ये छोड़ गया था। नहीं, ये तो किया था हमने। हाँ अच्छा, ये दो चार श्लोक मैं, हाँ ठीक है, मैं कल इससे पाठ करूंगा। हाँ, दो तीन श्लोक मैं बाद छोड़ गया था, पाठ किया था। ये मैं जो नित्यानंद कहे आमी देही तुमी प्राण, देहो प्राण भिन्न नहि यही तो प्रमाण, नहीं ये पाठ नहीं। हाँ, अचिंत शक्ति करो तुम्हें ताहार घटन। अच्छा ये मैं कल पाठ करूंगा, ये दो तीन श्लोक मैं ये दो श्लोक दो हाँ ये दो श्लोक बाद हो गए हैं हाँ ठीक है तब हाँ नित्यानंद कहे आमी देही तुमे प्राण देह प्राण भिन्न नहे यही तो प्रमाण। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया हे प्रभु आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ, प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है, अभी तो प्राण शरीर से बढ़कर हैं। अचिंत शक्ति करो तुम्हें ताहार घटन जे करा हो से ही करी ना ही को नियम। आप अपनी अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध क्या करता हूँ। नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बंगाल जाके प्रचार करने के लिए बोला। पहले बोला हर साल तुम जगन्नाथपुरी न आकर बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी इच्छा का मतलब भगवत भक्ति का प्रचार करो। ताहा सिद्धि करे है नो अन्य ना देखिए अमार दुष्कर कर्म तोमा हुईते हाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ये कार्य करो कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। जो कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ वो कार्य तुम कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौर देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है जो मेरे मिशन को पूरा कर सके। हाँ तब नित्यानंद प्रभु ने ये बताया कि नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया हे प्रभु आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ, प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है, अपितु प्राण शरीर से बढ़कर है। आप प्राण हैं मैं शरीर हूँ, यद्यपि प्राण और शरीर में अंतर नहीं है परंतु प्राण शरीर से बढ़कर है। तो ये सही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो काम आप नहीं कर पाते हैं वो मेरे लिए संभव होगा। और अचिंत शक्ति कर, इसके बाद आप अपने अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तो मतलब नित्यानंद प्रभु जाना नहीं चाहता था, मतलब ये जो निर्देश इसको ग्रहण नहीं करना चाहता था, बल्कि महाप्रभु ने उनको फोर्स करके ये कराया और नित्यानंद प्रभु अंत में मान लिया। ओके हाँ आज यहाँ तक ही हम रखते हैं। अच्छा हाँ कल तो पाठ नहीं होगा, कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ कल, तो मैं कल शनिवार रविवार सोमवार तीन दिन मैं नहीं रहूँगा बल्कि मंगलवार को वापस आ जाऊँगा। मंगलवार सुबह मैं लौट रहा हूँ, तब से फिर क्लास होगा और नहीं तो तुम लोग भी क्लास कर सकते हो। हाँ ये क्लास अच्छा लगता है हाँ तो क्लास करते रहना। तो हिंदी में पाठ हो रहा है, राघव पंडित तुम पाठ करोगे? राघव पंडित करो, पाठ करते रहो। ओके एक दिन राघव पंडित देना एक दिन गंगा नारायण देना, ठीक है? कल गंगा नारायण तो परसों राघव पंडित देगा, उसकी बात तुम करो। तो ठीक है तुम लोग आना कल, आओ देखेंगे कुछ पार्ट गगन यू कैन गिव सम। हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो ये बंद हो जाए। पाठ होता रहना चाहिए और सबको ओके हाँ वो लीला पाठ करो ठीक है। बीच बीच में जो आया है जिसका वर्णन विस्तृत रूप से नहीं हुआ है उसको पाठ करो। ओके हरे कृष्ण।